नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मालदा रेलवे स्टेशन पर हावड़ा, गुवाहाटी और कामाख्या के बीच चलने वाली भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी गुवाहाटी हावड़ा वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी को भी वर्चुअल रूप से रवाना करेंगे।
वंदे भारत चेयर कार की सफलता के बाद अब वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस की शुरुआत होने से भारत में लंबी दूरी की ट्रेन यात्रा अब और तेज, सुरक्षित और आरामदायक हो जाएगी। हावड़ा गुवाहाटी मार्ग देश के सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्गों में से एक है, जिस पर रोजाना लाखों यात्री सफर करते हैं। इस ट्रेन के शुरू होने से कालीघाट मंदिर और कामाख्या देवी मंदिर जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा अब और आसान, सुरक्षित और सुविधाजनक हो जाएगी। हावड़ा गुवाहाटी के बीच चलने वाली यह नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मौजूदा समय में इस रूट पर चलने वाली सबसे तेज ट्रेन सरायघाट एक्सप्रेस की तुलना में काफी कम समय लेगी। यात्रा समय कम होने से क्षेत्रीय व्यापार, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही अलग अलग क्षेत्रों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्ते और मजबूत होंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में 4 प्रमुख रेलवे परियोजनाओं के आधारशिला भी रखेंगे। श्री मोदी मालदा में 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की वर्चुअल रूप से रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को असम के गुवाहाटी में बोडो समुदाय की समृद्ध विरासत का उत्सव मनाने वाले ऐतिहासिक सांस्कृतिक कार्यक्रम बुगुरुम्बा 2026 में भी हिस्सा लेंगे। भारत और जापान महत्वपूर्ण खनिजों पर संयुक्त कार्य समूह गठित करने पर सहमत हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि रक्षा सहयोग दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि जापान के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री के बीच इस विषय पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि ये द्विपक्षीय साझेदारी वैश्विक अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में सक्षम है। जापान के विदेश मंत्री 3 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा पहल के भारत और जापान आर्थिक सुरक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक निजी सहयोग बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र संवाद का आयोजन करेंगे। एआई में सहयोग को गति देने के लिए दोनों पक्षों ने विदेश मंत्रालयों के नेतृत्व में एआई संवाद शुरू किया है। इसके अलावा दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों ने 2026 की शुरुआत में महत्वपूर्ण खनिजों पर संयुक्त कार्य समूह का गठन करने का निर्णय लिया है, जो एक नई पहल है। प्रवर्तन निदेशालय ने अलफलाह विश्वविद्यालय के कुलपति जवाद अहमद सिद्दीकी और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज की है। निदेशालय ने हरियाणा में इस समूह से जुड़ी लगभग 140 करोड़ रुपए की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। ईरान में सरकार की कार्रवाई के चलते प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या 3,090 हो गई है। हालांकि अब ईरान में शांति के संकेत दिख रहे हैं, दुकानें खुल गई हैं, लेकिन इंटरनेट पर एक हफ्ते का प्रतिबंध लगाया गया है। इस तनावपूर्ण माहौल के बाद कट्टरपंथी धर्मगुरु आयतुल्ला अहमद खातमी ने गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को मौत की सजा देने की मांग की और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी धमकी दी। वहीं ट्रंप ने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की फांसी रद्द करने पर ईरानी नेताओं को धन्यवाद दिया है। ईरान में तनाव बढ़ने के कारण भारतीय नागरिक कल देर रात नई दिल्ली पहुंचे हैं। भारत सरकार ने ईरान में अस्थिर सुरक्षा स्थिति को देखते हुए अपने नागरिकों से देश छोड़ने का आग्रह किया है। गणतंत्र दिवस परेड के पूर्वाभ्यास के कारण दिल्ली यातायात पुलिस ने आज और 19, 20 और 21 जनवरी के लिए यातायात दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देश के अनुसार परेड टुकड़ियों के सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सुबह 10:15 से दोपहर 12:30 तक यातायात प्रतिबंधित रहेगा। ये प्रतिबंध कर्तव्य पथ से जुड़ने वाली प्रमुख सड़कों पर लागू होगा, जिसमें रफी मार्ग, जनपथ, मानसिंह रोड और सी हेक्सागन के चौराहे शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और अभिनेता एमजी रामाचंद्रन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उन्हें याद किया और तमिलनाडु की प्रगति में उनके योगदान को अतुलनीय बताया। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज घना कोहरा रहेगा। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, मेघालय में भी ऐसी ही स्थिति का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता में गिरावट को देखते हुए तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान 3 लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।